الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔
سبحان اللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے سنو
کہانی۔
چل آج بھی کہانی لے کر آئے ہیں اور کہانی سے سیکھنے والا، ملنے والا، حاصل ہونے والا سبق آپ کو بتائیں گے۔ لیسن کیا ملا ہمیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ کہانی کو سننا ہے اول تاخیر۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں پیارے بچوں، ثواب ملتا ہے نیتوں پر۔ ثواب کس پر ملتا ہے؟
نیتوں پر۔
بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا ہے، تو نیتیں ہوں گی، اچھی نیت ہوں گی تو انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک نیت تو آپ کر ہی لیا کریں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کریں، کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز سن رہے ہیں، تو ایک نیت یہ کیا کریں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ کون سا کام؟ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ دینی کتاب ہو نا کوئی، میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ اچھا، اس میں آپ کوئی بھی کام کریں، اچھا نیک کام، میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ آسان یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سلام کیا کسی کو تو آپ کیا نیت کریں کہ جو سلام کرنے کی فضیلت ہے، جو اس پر ثواب ملتا ہے اس کو۔ اچھا، نیت زبان سے نہیں کہنا، ضروری نہیں ہے، اگر کہہ دے تو اچھا ہے، لیکن دل میں ہونا چاہیے کہ میں سلام کرنے والا ہوں ابھی، تو میں کیوں سلام کر رہا ہوں؟ ایک سوال تو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بھائی کیوں؟ کیوں؟ اللہ رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز فرض کی گئی ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں سے۔ تو یہ نیت آپ اپنے دل میں لے کر آئیں۔ کہاں لے کر آئیں گے؟
دل
میں لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ایک ایسے نیک شخص سے ہوئی جو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا، اور وہ لوگوں سے چھپ کر پہاڑوں میں عبادت کیا کرتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا اور لوگوں سے چھپ کر کیا کرتا تھا، کہاں؟ پہاڑوں میں۔ اس نیک شخص نے مجھے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ یہی چیز پسند تھی کہ میں اللہ پاک کے نیک بندوں سے ملاقات کروں۔ مجھے یہ کیا چیز پسند تھی کہ میں اللہ پاک کے نیک بندوں سے ملاقات کروں اور ان سے برکتیں حاصل کروں، اور اس لیے میں بزرگوں کی تلاش میں جگہ جگہ پھرتا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جاتا، اس امید پر کہ شاید اللہ پاک کے کسی نیک بندے سے ملاقات ہو جائے۔ یعنی نیک بندے سے ملاقات کے لیے وہ نیک شخص جگہ جگہ، کبھی جنگلوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کس لیے؟ اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ اور یہی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو چلیں ایک نیک بندے کی ملاقات کے لیے، یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے جو بزرگان دین گزرے، جو اللہ پاک کے اولیاء اکرام، جن میں ایک تعداد محدثین کی ہے، کن کی ہے؟ یا یوں لے لیں بڑے بڑے علماء کرام کی، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے نہیں، دنیا یوں کہہ لیں نا اگر، کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے جاتے تھے۔ اس وقت نہ جہاز، نہ ٹرین، نہ گاڑی، نہ
بائک،
کیسے جائیں گے؟ سفر پر ہیں، یا تو اونٹ ہے یا پیدل سفر کچھ، پھر رک گئے، پھر مہینوں کے بعد دوبارہ پہنچے، کوئی 3 مہینے میں پہنچ رہا ہے، کوئی 2 مہینے میں پہنچ رہا ہے، کس لیے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مل جائے، کوئی علم دین کی بات مل جائے، کسی کو پتہ چلتا کہ اتنے بڑے بزرگ آئے ہوئے یہاں پر اور یہ وہاں سے آئے اور ان کے پاس یہ علم ہے، تو فوراً پہنچ جاتے۔ और मुलाकात करनी हो उनसे, क्यों ये चीज सीख लें। तो ये क्या है, बरकत है ये। अच्छा बाज़ लोग ऐसे होते थे कि वो सिर्फ देखने के लिए, क्या करने के लिए, ज़ियारत हो जाए। देखें ना ताबईन, एक तो सहाबा किराम है, सहाबा किराम को सहाबियत का दर्जा कैसे मिला, क्या है, ईमान की हालत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना और ईमान पर मौत नसीब हो गई। तो ये सोहबत थी ना कि जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों को क्या बना दिया, सहाबा बना दिया। अच्छा ताबईन, ताबईन वो लोग जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की, तो वो ताबईन कहलाए, ये सहाबा के बाद अफजल लोग हैं। तो ये सोहबत होती है, क्या होती है, सोहबत की बड़ी बरकतें होती हैं। सोहबत से बहुत कुछ मिलता है, अच्छों की सोहबत अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत बुरा बनाएगी। अब ये नेक शख्स देखें क्या करते थे, ये जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, जगह जगह फिर रहे हैं, किस लिए, कि किसी अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात हो जाए। एक मरतबा कहते हैं कि मैं इसी तरह घूमता फिरता एक ऐसे समंदर के किनारे पर पहुंच गया जहां बिल्कुल आबादी नहीं थी, बिल्कुल
आबादी
नहीं थी, और कहने लगे कि इस तरफ कश्तियां नहीं आती हैं। वो एक वीरान जगह थी, बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल
वीरान जगह।
फिर अचानक मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो पहाड़ की साइड से आ रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वो शख्स भागना शुरू हो गया, कहने लगा
भागने
लग गया, मैं भी उसकी तरफ भागने लगा, पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। ये मुझे लगा कि शायद कोई अल्लाह पाक के वली हैं, मैं इससे मुलाकात करके ही जाऊंगा, ज़रूर करूंगा। मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा था कि अचानक उनका पाँव फिसला और वो गिर पड़े। मैं उनके करीब पहुँचा और पूछा कि ए अल्लाह पाक के बंदे, तुम मुझसे क्यों डर के भाग रहे हो। तो वो शख्स जो गिरे थे वो खामोश रहे और कोई बात नहीं की। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मैं तो तुझसे अच्छी और नेकियों भरी बातें सुनना चाहता हूँ, मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ, मुझे कुछ
अच्छी बातें बताओ।
ये सुनकर वो नेक शख्स कहने लगा कि तुम जहाँ भी रहो सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, सच्चाई को अपने ऊपर
लाजिम कर लो।
लाजिम से मुराद क्या होता है, हमेशा सच बोलो, हमेशा
सच बोलो।
यानी सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लेना, झूठ से बिल्कुल अलग हो जाना, झूठ बोलना ही नहीं है, अब क्या बोलना है, सच ही सच बोलना है, सच का साथ देना है। एक होते हैं कि सच बोलते तो हैं लेकिन बाज़ों का झूठ के, झूठ वाले बंदे का साथ दे देते हैं, भाई झूठ तो नहीं बोला ना मैंने लेकिन साथ दे दिया, लेकिन ये भी गलत है, क्या है,
गलत है।
आपको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, आपको साथ ना दें, सच का साथ दें, किसका साथ दें,
सच
कहें, सच का साथ दें। तो ये कहने लगे कि अपने ऊपर सच्चाई को लाजिम कर लो। फिर उस शख्स ने चीख मारी और ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसे देखा तो पता चला कि उसका तो इंतकाल हो चुका है। वो नेक शख्स कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि इतने वीराने में अब कफन दफन कैसे करूँगा मैं, कफन देना है, कफन दफन से मुराद यानी मैयत को कफन देते हैं, गुस्ल वगैरह की अहतमाम होता है, फिर दफनाया जाता है कब्र में, यह इस्लामी तरीका है, कैसे करूँगा मैं, तो यहाँ मेरी मदद कौन करेगा, कौन आएगा मदद के लिए, यहाँ तो दूर दूर तक नामो निशान किसी का नहीं है, अब मैं करूँ क्या। मैं यही सोचता रहा कि यहाँ तक कि रात हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मैं एक तरफ जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। फिर कहते हैं कि मैंने देखा ख्वाब, क्या देखा मैंने, ख्वाब देखा कि आसमान से चार ग्रुप्स पहाड़ पर उतरे, कितने,
चार ग्रुप,
ग्रुप मीन समझते हैं ना, जिसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, ग्रुप एक ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं, तो चार ग्रुप्स उतरे अलग अलग, कहाँ उतरे, पहाड़ पर, और उन्होंने उस शख्स के लिए कब्र खोदी, क्या करी,
कब्र खोदी,
क्या किया, कब्र खोदी, फिर उसे कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ के उसे दफन कर दिया। इतने में अचानक मेरी आँख खुल गई, कहते हैं कि मैं ख्वाब की वजह से बहुत डरा हुआ था, बाकी रात मैंने जाग कर गुजारी। जब सुबह हुई तो मैं उस जगह पहुंचा जहां उस शख्स को मरने के बाद छोड़ा था। देखें अब आप सोच रहे होंगे कि रात को क्यों नहीं देख सकता था भाई, रात को जब आँख खुल गई थी तो रात को जाकर देख लेता। तो प्यारे बच्चों पहले ज़माने में यानी लाइट का तो कोई नामो निशान
नहीं था,
लोग चांद की रोशनी से जाते थे, चांद की रोशनी होती थी बस, नहीं जो आपको नज़र आ रही रोशनियाँ, चाहे मदनी सेना के नाज़रीन जो घर पे बैठे हुए हैं, रोशनियाँ नज़र आ रही हैं सब जगह, कमरे में रोशनी है, लाइट है, सिर्फ चांद की रोशनी, या ज़्यादा से ज़्यादा तो लकड़ी जला ली, आग लगा ली, चराग की रोशनी कर ली, वो भी अगर मुयस्सर है तेल वगैरह भी जो, क्योंकि उसका भी एक पूरा वो है, हर जगह तो नहीं मिलेगा लकड़ी, हर जगह आपको तैयार नहीं मिलेगी कि जिस पर आग लगा लें आप, चलें भाई फौरन जला लिया। तो सिर्फ चांद क्या होता था, सिर्फ चांद उसकी रोशनी से लोग रास्ते देखते थे, रात में सफर करते थे, और उमूमन रात को सफर नहीं होता था, रात में आराम किया जाता था, रुक जाते थे काफले। अब जब सुबह हुई तो वो शख्स पहुंचे वहां जहां उन्होंने उस बंदे को, उस नए शख्स को मरने के बाद छोड़ा था। वो फरमाते हैं कि मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहां मैयत की डेड बॉडी यानी जिस्म मौजूद ही नहीं है। क्या हो गया? गायब। कहां गायब हो गया? मैंने बहुत तलाश किया, कहते हैं, लेकिन इसकी डेड बॉडी ना मिल सकी। फिर मुझे वहां से कुछ फासले पर एक नई कब्र नजर आई। मैं समझ गया कि ये वही कब्र है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। सल्लू अल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला
मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मगफिरत हो। देखें प्यारे बच्चों, अब कहानी थोड़ी मुश्किल तो थी आप लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे यार क्या समझ में आया इसमें, क्या समझ में आया? बहुत सारी बातें समझने वाली थी। एक तो ये कि जो अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह पाक के नेक बंदे जो अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, लोगों को छोड़ देते हैं और इबादत करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो अल्लाह पाक मदद फरमाता है। बंदा अगर अल्लाह पाक के काम करना शुरू कर दे, अल्लाह पाक का काम क्या है? अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले काम, यानी अल्लाह पाक की इबादत, लोगों की दिलजोई, सच बोलना। बुजुर्ग ने क्या फरमाया था? हमेशा अपने ऊपर सच्चाई को लाजिम कर लो, यानी सच बोलो। तो सच बोलना ये अल्लाह पाक को राज़ी करने वाला काम है। अल्लाह पाक के लिए अगर हम सच बोलेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। तो ये हमें सीखने को मिला कि जब भी हम कोई काम करें या कुछ कहें या कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, उसमें ये देखें कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। बस सच्चा नहीं है ना तो फिर आप सोच लेंगे आप सच्चे क्यों नहीं है भाई, सच वाला काम करें ना, झूठ वाला काम तो नहीं करेंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक अपने इन नेक बंदों के ज़रिए हमें भी अच्छा बनाए, नेक बनाए, सुभान अल्लाह। और ये भी हमने कहानी में सुना कि वो अल्लाह पाक के ऐसे नेक बंदे थे कि जहाँ कोई उनके साथ कफन दफन करने वाला ना हो, कफन कफनाने वाला, इंतकाल के बाद दफन करने वाला, नमाज जनाजा कौन पढ़े? तो अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। चार ग्रुप्स आए थे, उन्होंने कफन का भी इंतज़ाम किया, दफनाने का भी इंतज़ाम किया, और सही सलामत जो एक तरीका होता है मरने के बाद इस्लाम के अंदर मुर्दे को दफनाया जाता है, वो पूरा का पूरा काम कर दिया। तो ये अल्लाह पाक की मदद थी। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की इस तरह मदद फरमाता है और उन्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजता है, बहुत बुलंदियाँ अता फरमाता है। तो हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए, इनकी ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी, हमें बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला
मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
कहानी
सुनो, कहानी
सुनो, कहानी
जल्दी जल्दी सुनो, कहानी
सुनो, कहानी।